मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम की मानवीय अनसुनी कहानी का ये वेब शो मेरे राम मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। मेरे राम आज से मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी सुना। तुम सब जो मुझे सुन रहे हो, मेरे राम हो, सीता हो, और तुम सृष्टि की श्रेष्ठ रचना और श्रेष्ठतम के उत्कर्ष पर तुम्हें पहुंचना है। ये जो वेब शो है जो आज से शुरू हो रहा है, मानव है मेरे राम, ये राम का आयन है। आयन माने गतिशीलता, इसीलिए तो रामायण नाम है। इसमें राम का आयन है, गतिशीलता है। ये राम कथा नहीं है केवल, कथा तो एक डन प्रोसेस भी हो जाती है, लेकिन आयन है, लगातार चल रहा है, गतिशील है, मोबिलिटी है। इस राम विष्णु के सातवें अवतार राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है, उसमें मानवीय चेहरा, राम का मानवीय चेहरा कहीं छुप सा गया है, ऐसा मैंने अनुभव किया। मानव है मेरे राम वेब शो में राम के उसी छुपे हुए व्यक्तित्व को मैंने उभारा है। इसलिए मिथकों में छुपा हुआ इतिहास, रोचक अंतह कथाएं, इनर स्टोरीज, जो एक मूल कथा के साथ में अंतह कथा निकलती है। राम की बात होती है तो गुरु वशिष्ठ की बात होती है, विश्वामित्र जी की बात होती है, अहिल्या की बात होती है, ताड़का की बात होती है। ये सब क्या है? ये अंतह कथाएं। और ऐसा बहुत कुछ, ऐसी सारी अंतह कथाओं का जो तार्किक आधार है, मानवीय आधार है, वो भी आपके सामने आने वाला है। ये रोमांच भी देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा कहीं कहीं मेरे राम, और रहस्यों से पर्दे भी उठाए। बहुत से कथानक आपके मन में हैं राम के, और आपको लगता है कि ऐसे क्यों हो गया, एक स्त्री होते हुए ताड़का का वध क्यों कर दिया राम ने, राम तो सिद्धांतवादी है, अहिल्या का सम्मान क्यों किया राम ने, क्या था आखिर ऐसा सम्मान किया था, उद्धार नहीं किया था, उद्धार और सम्मान में अर्थ क्या है, आएगा आपके सामने मेरे राम। और बहुत सारे प्रकरण, बाली का वध एक बड़ा प्रसंग है, कैसे राम ने कर दिया ये बाली का वध, छुप करके कर दिया, जानिएगा मेरे साथ मानव है मेरे राम। राम की जो अंतह दशाएं हैं, जो उनका इनसाइट पार्ट है राम का, जब वो दंडकारण्य में है, सीता का जब हरण हो जाता है, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा कि राम पशु पक्षियों और प्रकृति से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या तुमने सीता देखी, ये तो एक मिथक है। क्या घट रहा था राम के अंदर, मेरे राम ये आपके सामने आए। और जब किष्किंधा पहुंच रहे हैं राम, और तैयारी है रावण पर आक्रमण करने की, और सुग्रीव जो एक बहुत छोटा सा निर्वासित राजा है, उससे मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं, तब क्या सोच रहे हैं राम, कहां भावुक होते हैं राम, कहां रेडिकल होते हैं, और कहां मर्यादा का परसोना ओढ़ लेते हैं राम। ऐसे बहुत से रहस्यों से पर्दा हटेगा मेरे राम इस मेरे वेब शो में मानव है मेरे राम। मेरे राम मुझे जो लगा है, सदैव से लगा है, कि राम भारतीय आदर्शों के ब्रांड एम्बेसडर है। पूरे विश्व में जब राम की बात होती है, तो वो राम की बात नहीं होती है, भारत की बात, भारतीयता की बात होती है, भारतीय मूल्यों की बात होती है, इंडियन प्रिंसिपल्स, पैरामीटर्स, सोशल पैरामीटर्स एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजन की बात होती है। और ये सब चीजें समाहित हैं एक व्यक्ति में, केवल एक व्यक्ति में, और वो है राम। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम भारतीय आदर्शों के, मूल्यों के, सिद्धांतों के, भारतीय संस्कृति के, भारतीय मनीषा के, भारतीय मनुष्यता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जहां राम की बात होती है वहां पूरे भारत की बात होती है। मेरे राम तुलसी के साथ ही वाल्मीकि के भी राम है। भारतीय मानस में राम की जो छवि है वो रामचरित मानस से है, बड़ी उत्तम छवि है, मेरी कोई चुनौती नहीं है उसको। लेकिन मेरे राम वाल्मीकि के भी राम है, कम्बन के भी राम है, और आध्यात्म रामायण के कवि राम शर्मन के भी राम है। राम तो उन 300 राम कथाओं के भी हैं जो पूरे विश्व में लिखी गई। मेरे राम इन सभी रामों के मानवीय अवतरण है। इसलिए जो मानव है मेरे राम वेब सीरीज है, उसका हर शो, हर एपिसोड एक अनसुनी अनकही कहानी लेकर के आएगा और फिर एक भंडार बन जाएगा ऐसी कहानियों, जस्ट एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राम आपके सामने आ रही है। मेरे राम, मेरा जो संबोधन रहेगा इस पूरे सीरीज में तुम्हारे लिए, वो तुमका संबोधन जो मैं तुम्हें दे रहा, कारण है क्योंकि ईश्वर के किसी भी रूप को कहीं भी आप नहीं कहा गया है, तुम ही कहा गया है, तू ही कहा गया। मेरे श्रोता, मुझे देखने वाले मेरे लिए ईश्वर के ही रूप, इसलिए मैं तुम्हें तुम ही कहूं। मानव है मेरे राम के माध्यम से मैं तुम्हें डिवाइन आइकॉनशिप की विरासत सौंप रहा हूं, एज अ हेरिटेज ऑफ डिवाइन आइकॉनशिप। भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है किसी विदेशी व्यक्ति को अपना आइकन बनाने। हमारे राम, कृष्ण, बुद्ध एक बड़े आइकन, इनसे बड़ा आइकन विश्व में कोई नहीं है। उन्हीं की विरासत, जो तुम्हारी विरासत है, तुम्हें ही सौंप रहा हूं। भौतिक जीवन हमारे लिए बहुत आवश्यक, बिना मटेरियलिज्म के हमारा विकास नहीं हो सकता। लेकिन अगर मटेरियलिज्म, एक्सट्रीम मटेरियलिज्म हो जाता है, भौतिकता, चरम भौतिकता हो जाती है, उपयोगितावाद उसमें आ जाता है, यूटिलिटेरियनशिप आ जाती है, तो क्या होता है, मूल्यों का ह्रास हो जाता है, सिद्धांत टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। इसलिए मेरे इस शो में, मानव है मेरे राम में, आध्यात्मिकता का समावेश है बौद्धिकता के साथ। जब दोनों दूध और शक्कर की तरह से आपस में मिल जाते हैं तो वो विकास होता है देश का और व्यक्ति का और समाज का कि पूरी दुनिया आह कह उठती है। मैं चाहता हूं कि भारत के साथ, भारत का अर्थ है तुम, हमारे साथ, तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। राम की इस कथा में दैवीय तत्व और मिथक साथ चलेंगे, लेकिन राम रहेंगे मानव ही। मेरे राम जन्म से मानव हैं, लेकिन कर्मों ने उन्हें अवतार बना दिया है। दोनों का स्वागत है। मानव है मेरे राम में, मेरे राम आत्म दक्षता, आत्म प्रबोधन, लीडरशिप स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव क्यूसेंट, इन सब के टिप्स भी बिना मेरे कहे आपको अपने आप मिलते जाएंगे। और साथ ही भारतीय संस्कृति का बोध भी तार्किक आधार पर तुम्हें मिलेगा, लॉजिकल। पांच की संख्या महत्वपूर्ण क्यों है, 11 की क्यों है, 101 की क्यों है? मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मानव है मेरे राम, राम की एक जर्नी है, जर्नी ऑफ डिस्कवरी, एक खोज है जिसमें मर्यादाओं के परसोना में छुपे हुए राम को खोजा गया है। और मेरा संकल्प है जो तुम्हारा भी संकल्प बने कि राम पूजनीय है रहे लेकिन अनुकरणीय भी हो जाएं। तुम्हारा साथ है तो ये संकल्प पूरा भी होगा। आइए मेरे राम शुरू करते हैं, राम की अनसुनी कहानी, मेरी जुबानी यानी प्रदीप दीक्षित की जुबानी। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या, उस अयोध्या की ओर ले चलते हैं जो राम के समकालीन है। राम के जन्म के यज्ञ की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। सरयू का तट है, संध्या का अवतरण हो चुका है, सरयू के तट पर विचरण कर रहे हैं राजा दशरथ। काफी दूर निकल गए हैं राजा दशरथ, अयोध्या पीछे छूट रही है, अयोध्या का नगर और वहां का नगरीकरण भी पीछे छूट रहा है, अरण्य शुरू हो गया है। चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ, उनके मन में विचार में एक ही बिंदु है कि वो संतानहीन है। राजा सोच रहे हैं, दशरथ सोच रहे हैं, सम्राट सोच रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट सोच रहे हैं कि वो संतानहीन है। दशरथ स्वयं तो जानते हैं और अयोध्या के बहुत कम लोग जानते हैं कि वो संतान ही नहीं है। राजा दशरथ संतान ही नहीं है, वो पुत्र ही नहीं। राजा दशरथ ने तो अपनी पहली संतान अपने गहन मित्र लोमपाद को दे दी थी। कहीं लोमपाद का उल्लेख है, कहीं रोमपाद का उल्लेख। तब तो उन्हें अपनी पुत्री का नाम भी याद नहीं था, पता नहीं था। रोमपाद ने नाम रखा शांता उस कन्या का। शांता भी तो नहीं जानती थी कि उसके पिता दशरथ थे। दशरथ को तो बस अपने मित्र को पिता बनाने का सुख देना था जो उन्होंने दिया, लेकिन शांता के बाद राजा दशरथ संतानहीन भी है और पुत्रहीन भी है, क्योंकि ये संतान तो उन्हें पता है, उनके परिवार को पता है, उनकी रानियों को पता है, लेकिन बाकी तो सब यही जानते हैं कि राजा दशरथ अभी भी संतानहीन। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ सूर्यवंश 39वें राजा दशरथ पर आकर ठहर गया है। पुत्र कामना से व्याकुल दशरथ को अचानक अनुभव होता है कि रात्रि उतर आई है सरयू के जल में, अयोध्या की नगरी में, और उन्हें लगता है कि अब वापस लौटना है। सम्राट दशरथ लौटते हैं नदी की मुख्य घाट की ओर, सरयू के घाट की ओर, और फिर उनका रथ चल पड़ता है राजमहल की ओर। सम्राट दशरथ जानते हैं कि मानव के लिए संतान का सुख परम आवश्यक है, और यह सुख तभी मिलता है, संतान का सुख तभी मिलता है जब ऋषियों मुनियों के आशीष और प्रजा की प्रार्थनाएं अपना परिणाम लाती है। इसीलिए राजा दशरथ एक निर्णय करते हैं अपने मन में। देखो निर्णय, देखो राजा दशरथ का निर्णय क्या कर रहे हैं। राजा दशरथ निर्णय कर रहे हैं अपने मन में कि वे अश्वमेध यज्ञ करें। राजा दशरथ को स्वयं सिद्धि के लिए पुत्रेष्टि पुत्र कामेष्टि यज्ञ की लालसा नहीं है। राजा दशरथ निर्णय क्या करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। राजा दशरथ के संदर्भ में वो निर्णय क्या करते हैं कि वे अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ क्यों करेंगे राजा दशरथ? क्योंकि राजा दशरथ जानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में सच्चा आशीर्वाद और शुभकामनाएं तभी मिलती है जब आशीर्वाद देने वालों का हित भी उस व्यक्ति के कर्म में उसके हित में शामिल हो। हां, ऐसे ही सबका आशीर्वाद नहीं मिल जाता, ऐसे ही सबकी शुभकामनाएं नहीं मिल जाती। व्यवहारिकता जो है, उस व्यवहारिकता को पाने के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि स्वहित में परहित शामिल हो। राजा दशरथ इस मानसिकता से परिचित हैं, इसीलिए वो अश्वमेध यज्ञ का निर्णय करते हैं। ये पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत है, इंटरडिपेंडेंसी का आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल है कि हम अपने हित में दूसरे को जब शामिल कर लेते हैं तो दूसरा हमारे हित के साथ में अपने आप जुड़ जाता है। अश्वमेध यज्ञ लगभग एक वर्ष तक चलने वाला एक महायज्ञ है। इसमें बड़ी मात्रा में ऋषि मुनि मित्र राजा तमाम सारे लोग आमंत्रित होते हैं और प्रजा भी सहभागी होती है। अश्वमेध यज्ञ से राजा का विस्तार होता है, राज्य का भी विस्तार होता है और राजा का भी विस्तार होता है और समृद्धि बढ़ती जाती है, रोजगार के अवसर और व्यापार बढ़ता जाता है। एक वर्ष तक चलने वाले यज्ञ के धूम्र वलयों से पर्यावरण शुद्ध होता जाता है, जो व्यापक मात्रा में अग्नि वेदिकाएं प्रज्वलित होती हैं और जिनसे संविधा के बादल बनकर के आसमान में छा जाते हैं। बादल अच्छे बनते हैं, वर्षा अच्छी होती है और कृषि पशुपालन शिल्प व्यापार सभी का विकास होता है। एक वर्ष के लिए बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी अतिरिक्त रूप से मिल जाता है, वस्तुओं का उपभोग बढ़ जाता है, कंजम्पशन बढ़ जाता है। राजा प्रजा की समृद्धि का एक माध्यम बन जाता है और प्रजा की समृद्धि के लिए यह अश्वमेध यज्ञ एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में सामने आता है। चारों वर्णों को इससे लाभ मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को लाभ मिलता है, निर्धनों को बड़ी मात्रा में दान भी मिलता है। और मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगा, सुनो मेरे राम, कि अकर्मण्य लोगों के लिए एक वर्ष के भोजन और वस्त्र की व्यवस्था हो जाती है। व्यवस्था बड़ा मजेदार शब्द है भारतीय भाषा हिंदी में। व्यवस्था में व्यक्ति को स्वयं कुछ नहीं करना होता है, एवरीथिंग इज डन बाय अदर्स एंड ही हैव टू ओनली कंज्यूम एंड टू जस्ट गेट प्लाजा। तो ऐसी चीजें लोग सोचते हैं, खुले हाथ से दिए जाने वाले दान का सर्वाधिक लाभ, याद रखना हमेशा, जो सर्वाधिक लाभ होता है ऐसा लाभ जो राज्य के राजा के या सरकार या सम्राट के द्वारा दिया जाता है उसका सबसे ज्यादा लाभ अपात्रों को ही मिलता है। तो मेरे राम, तुम्हारे समझ में आ रही है ये बात? अश्वमेध यज्ञ के साथ राजा दशरथ के मनोभावों को जानकर कौशल जनपद के मंत्री सुमंत के सुझाव पर, एक विशेष काम हो रहा है और ऋषि ऋष्य श्रृंग को इस यज्ञ में आमंत्रित किया जा रहा है। सुनिए हमारे कथा व्यास जी की वाणी, योगेश जी की। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
श्रृंगेरे सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगेरे सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। तो किन्हें बुलाया गया? ऋषि को बुलाया गया। कौन से ऋषि? विशेषज्ञ ऋषि को बुलाया गया, ऋषि ऋष्य श्रृंग को बुलाया गया। कर्नाटक के कदूर जिले के निवासी हैं ये ऋषि। संक्षेप में इन्हें श्रृंगी ऋषि कहते हैं, लेकिन वो श्रृंगी ऋषि अलग हैं जिनका संबंध राजा परीक्षित से है, और ये दूसरे हैं। आज जो चिकमंगलूर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर, उसके पास में वहीं के रहने वाले थे ये ऋषि। और ये बड़ा पवित्र स्थान है मेरे राम। तुम्हारा मौका लगे, कभी गए हो या जाने का अवसर मिले तो जरूर जाना। आज इस स्थान को श्रृंगेरी कहते हैं। यहीं पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी दक्षिणी मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। मेरे राम ये भी ध्यान रखना कि शंकराचार्य ने जो चार धाम स्थापित किए, यही वास्तविक धाम है। और उसमें जो दक्षिणी धाम है, दक्षिणी सीमा का, वो श्रृंगेरी है, वो रामेश्वरम नहीं है। रामेश्वरम अलग धाम। तो श्रृंगी ऋषि से, और श्रृंगी ऋषि बड़े महत्वपूर्ण हैं दशरथ के लिए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ऋष्य श्रृंग यानी कि श्रृंगी ऋषि से ही दशरथ की दी हुई कन्या शांता का विवाह रोमपाद ने किया है। तो कौशल कुलगुरु वशिष्ठ की भी सहमति है कि श्रृंगी ऋषि को अवश्य बुलाया जाए और इस प्रकार का एक अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया जाए। इस संपूर्ण यज्ञ के जो मुख्य संचालक हैं, मुख्य अध्वर्यु हैं, वो ऋषि वशिष्ठ ही हैं। बड़ी विशेषता होती है वैदिक यज्ञों में। वैदिक यज्ञों में चार ऋत्विज होते हैं। प्रत्येक वेद का एक विशेषज्ञ जो ब्राह्मण होते हैं, वे ऋत्विज कहे जाते हैं। ऋग्वेद का ऋत्विज होता है या अध्वर्यु, यजुर्वेद का ऋत्विज होता है, और उद्गाता सामवेद का होता है, और ब्रह्मा अथर्ववेद का ऋत्विज होता है। अश्वमेध यज्ञ में ऋषि श्रृंग की भूमिका एक विशिष्ट आमंत्रित अतिथि की है, एक ऋषि की है। और जो बड़े यज्ञ होते थे, विशेष करके अश्वमेध में, उसमें एक एक वेद के चार ऋत्विजों को आमंत्रित किया जाता था, यानी संख्या बनती थी 16 ऋत्विजों की, और एक होता यजमान, इसलिए 17 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई। 16 + 1 = 17। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहां हमारा जो संस्कार है, हमारी जो धार्मिक और आध्यात्मिक और पौराणिक क्रियाएं हैं, उसमें 5 की संख्या का महत्व बहुत ज्यादा है। कुछ भी होता है, 5 का प्रयोग होता है। 5 का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि 4 तो हो गए ऋत्विज, मैंने अभी चारों आपको गिनाए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4। और इन चारों की विशेषता में क्या है कि जो ब्रह्मा है ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और ये माना गया है कि ही मस्ट बी वेरी सीनियर फेलो। सबसे आयु वृद्ध व्यक्ति होना चाहिए। ये यज्ञ का अध्यक्ष होता है और निरीक्षक भी होता है, इंस्पेक्टर ऑफ द फायर कल्ट्स, ये ब्रह्मा होता है। लेकिन ब्रह्मा का जो महत्व है वो पदेन बहुत ज्यादा है, पदेन बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक रूप से जो सर्वाधिक महत्व होता है ऋग्वेद यज्ञ में, वैदिक यज्ञ में, वो अध्वर्य का होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यज्ञ का जो संचालन है, जो अग्नि का प्रज्वलन है, वसोर्धरा है, ये सब अध्वर्य के अधीन है। और उद्गाता तो चाहिए बहुत यंग, नया लड़का चाहिए, इसलिए कि उसकी वॉइस क्लियर हो, उसका फोनेटिक्स क्लियर हो, उसका उच्चारण स्पष्ट हो, उसमें दोष न हो, और लाउड वॉइस हो, जिससे कि उसकी आवाज उसके द्वारा द्वारा पढ़े गए मंत्र चारों तरफ वातावरण में स्पंदित हो सके। इसलिए सबकी विशेषता अलग है और हर प्रकार से इन लोगों को इस रूप में आमंत्रित किया जाता था। तो चार हो गए ऋत्विज और पांचवा है यजमान। ययुष से बना है यजमान, जिसे आजकल लोग बोलते हैं यजमान, यजमान। तो एक यजमान और चार वेदों के चार ब्राह्मण, यानी कि चार ऋत्विज, कुल मिलाकर के संख्या हो गई पांच। इसलिए पांच की संख्या हर जगह पवित्र और शुभ मानी जाती। तो अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। इसमें ऋषि श्रृंग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भूमिका इनकी आगे अभी आएगी यज्ञ की पूर्णता के अवसर पर, क्योंकि ये ऐसे ऋषि हैं, कहीं कहीं तो इन्हें राजा भी माना गया है कि रोमपाद ने अपना राज्य भी इन्हीं को दे दिया था। ये गृहस्थ होकर के भी मानसिक रूप से ब्रह्मचारी थे। विदेह, विदेह शब्द सुना है आपने, खूब सुना है। विदेह राज जनक के बारे में सुना है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्होंने विदेह माधव के बारे में सुना है। तो ऐसे विदेह थे ये श्रृंगी ऋषि, शरीर से कर्म भी करते हैं। विदेह होने का अर्थ अकर्मण्य होना बिल्कुल नहीं है। गीता में कृष्ण भी कहा है कि निर्विकारता का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है, कर्म ना करना विदेह होना नहीं, कर्म के परिणाम में स्वयं को सम्मिलित ना कर लेना ही विदेह होना है। मुझे रमानाथ अवस्थी जी की एक लाइन याद आ रही है, भीड़ में भी रहता हूं वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, भीड़ में भी रहता हूं वीरान के सहारे। यही है निर्विकारता, यही है निष्प्रह्यता, यही है विदेह होना। ये जीवन का सच्चा आदर्श है, यही कृष्ण का संदेश है गीता का। ऐसे ही ऋषि राजा रोमपाद के कहने पर आए हैं श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि जानते भी नहीं हैं कि वे अपनी ससुराल में आए हैं, क्योंकि ऋषि श्रृंग का वर्तमान निवास तो कीकट क्षेत्र है मगध का। ये मगध तो इसके सेंटर में है, मगध मन विहार, लेकिन अंग मिथिला और उसके आसपास का जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है उसे ऋग्वेद कहता है कीकट, वेयर द फायर कल्ट्स एंड रिचुअल्स ऑफ द यज्ञास ऑफ द वैदिक रिचुअल्स आर नॉट परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड द कीकट एरिया, उपेक्षित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर ना यज्ञ होते हैं ना उनके अनुष्ठान होते हैं। कारण क्या है? आपने सुना होगा, त्रयी, तीन वेद को मिलाकर के हुई त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद नहीं है त्रयी, क्योंकि इन तीनों वेदों की रचना होती है पांचाल और कुरु के क्षेत्र में, जो श्रेष्ठ जन माने गए हैं। अथर्ववेद की रचना होती है पूर्वी भारत में, यानी इसी क्षेत्र में जो मैंने अभी आपको इंगित किया। हमारी जो संस्कृति रही है वैदिक काल का, हमारा जो एक एटीट्यूड रहा है मनोवृत्ति सोचने की, उसमें हम निवृत्ति पर अधिक केंद्रित हुए हैं, प्रवृत्ति पर कम। इसलिए प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने मेटलिज्म, इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उत्पादन और उपभोग, ये हमारे इच्छित लक्ष्य जीवन के नहीं है। हमने पहले स्वर्ग चाहा और फिर बाद में मोक्ष चाहा। ऋग्वेद में हम कभी मोक्ष नहीं चाहते, हमारी कोई कल्पना नहीं है ऋग्वेद में कि हमें मोक्ष चाहिए। वी नेवर डिजायर एनी काइंड ऑफ सल्वेशन। वहां तो हमें स्वर्ग चाहिए, हमारा जो काम में है वो स्वर्ग है, हैविंग, वी वॉन्ट टू हैव ऑल काइंड ऑफ द प्लेजर्स वी वॉन्ट टू कंज्यूम टू एंजॉय इन दिस लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। And after death, we also want to enjoy the same kind of the pleasures in the heaven also. हमें चाहिए, सुख चाहिए, बहुत सुख चाहिए और सभी प्रकार के भोग चाहिए। इसीलिए हमारी जो स्वर्ग की कल्पना भी है वो भोगमय है। इसीलिए लेकिन फिर जब हम उत्तर वैदिक काल में आते, ऋग्वेद के बाद जब हम यजुर्वेद से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, तो वहां पर हम मोक्ष की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। अरण्यक और उपनिषद हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें अथर्ववेद अधिक प्रिय नहीं था। ऋषि श्रृंग अथर्ववेद के विशेषज्ञ हैं। जब यज्ञ समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो गया है, तो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं राजा दशरथ, उनके पास में श्रृंगी ऋषि के, तो वो जाग जाते हैं अपनी साधना से, आशीर्वाद तो देते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का एक संकल्प व्यक्त करते हैं और वो यज्ञ प्रारंभ होता है। इसी पुत्र कामेष्टि यज्ञ की चर्चा अधिकतर की जाती है तमाम व्यास साहित्य में, रामकथा साहित्य में, और इसी यज्ञ में अग्निदेव ने राजा दशरथ को पायस, खीर, क्षीरोदन जिसे कहा गया, वो दिया था और दशरथ ने अपनी प्राणियों को खिलाया था, और जिससे फिर जन्म हुआ था दशरथ के चारों पुत्रों का। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
विप्रधेन सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।